नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहेमाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है सहारा। तेरे सिवा जग में जग में मसीहा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है सहारा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर आनंदित हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे उन मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इसके साथ साथ मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपने आशीषों को पत्र के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। आज मैं आप सबको बता दूं कि हम नहेमिया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो पुराने नियम की एक पुस्तक है। और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि नहेमिया द्वारा उत्साह दिलाने पर सबने मिलकर शहरपनाह का काम आरम्भ किया। उन्होंने भेड़ फाटक से काम आरम्भ किया और मछली फाटक तक आ गए, परंतु कुछ अहंकारी लोग उनके बीच में थे। इससे आगे के अध्ययन में आज हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हैं इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि हम दूर में रह करके भी आपके वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी हम सुनते हैं अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार से चल सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, पारिवारिक समस्याओं से, आर्थिक समस्याओं से, नौकरी की समस्या से उलझे हुए हैं। आप उनकी सहायता करें, उन्हें आशीष दें, ताकि यह समय हम सबके लिए आशीष का समय हो सके। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप मेरे साथ निकालिएगा नहमिया की पुस्तक 3:5। नहमिया की पुस्तक 3:5 लिखा हुआ है, इनसे आगे तकोइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर न लिया। ध्यान दीजिए, इन रईसों ने सोचा कि वे इस छोटे काम के लिए बहुत बड़े लोग थे, या उनके पास कोई और बहाना था। आप सोच रहे होंगे कि उनके हाथ कोमल थे और वे पत्थर नहीं उठा सकते थे। मेरे मित्रों, यदि आपने यरूशलेम के शहरपनाह के पत्थर देखे होते तो आप वास्तव में उनके कठोर परिश्रम पर अचंभा करते कि उन्होंने ऐसी भारी पत्थर उठाए। जी हाँ, आप संभवतः उन तकोइयों से सहानुभूति भी रखेंगे। वे काम में हाथ बटाना ही नहीं चाहते थे। उन पत्थरों को चढ़ाने के लिए बहुत मानव शक्ति की आवश्यकता थी। उन दीवारों को बनाने में बहुत दांतों का पीसना और मेहनत हुआ होगा। कितनों के हाथों में घाव, कितनों के पाँव में घाव और कितनों की पीठ छिली होगी। सच तो यह है कि इस कठोर परिश्रम से उनका संपूर्ण शरीर फोड़ा का सा हो गया था या फोड़ा सा दर्द करता था। तथापि रईस लोग काम से चोरी कर रहे थे और काम करने से पीछे हट गए। यह भी बड़ी रोचक बात है कि वे रईस मछली फाटक पर ही थे, जो गवाही का प्रतीक है, परंतु वे परमेश्वर के गवाह कदापि नहीं हुए। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं तो निश्चय ही उनमें से एक नहीं होना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन में लिखा जाए कि मैंने उसके दिए गए काम को पूरा नहीं किया। आज कलीसिया में अनेक जन हैं जो परमेश्वर द्वारा दिए गए काम को नहीं करते हैं। मैं अविश्वासियों के नहीं, विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। ये विश्वासी कुछ नहीं कर रहे हैं, वे परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। नीति वचन 11:26 में लिखा है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं। अनाज परमेश्वर के वचन का प्रतीक है और परमेश्वर के वचन को भूखे लोगों से रोकना एक अत्यधिक भयानक बात है। जी हाँ, क्या आपने कभी इस विषय में विचार किया है? इस पद को ध्यान से पढ़ें, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। यदि हम आज उसकी इच्छा में हैं, तो हमें कहीं ना कहीं भूखों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने के अभियान में सहभागी होना होगा। अकेला तो कोई भी इस काम को नहीं कर सकता, यह एक सामूहिक प्रयास होना है। जैसा कि कहावत भी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर आपको चाहता है ताकि आप उसके कार्य को पूरा करें। आगे हम देखते हैं पुराना फाटक। अब तीसरा फाटक है जिसका नाम पुराना फाटक है। नहमिया की पुस्तक 3:6 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासेह के पुत्र योआदा और बसोदयाह के पुत्र मसुल्लाम ने की। उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेड़े लगाए। पुराना फाटक वह द्वार है जो सबसे पुराना है और आरंभ से है। यिर्मयाह 6:16 से हमें विदित होता है कि इस द्वार में हमारे लिए एक संदेश निहित है। सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। मेरे मित्रों, हमारे आज के युग में मनुष्य नई नई बातों में रुचि रखता है। उन्हें सबसे आधुनिक गाड़ी, पोशाक, घर का सामान आदि चाहिए। एक बार एक मनुष्य जिसकी लालसा नए नए वस्त्रों की थी, मुझसे कहा, आप सकरे कॉलर का कोट पहने हुए हैं, अब तो चौड़े कॉलर का फैशन आ गया है। कोट का कॉलर मेरे लिए अर्थहीन है, परंतु अनेकों को इससे अंतर पड़ता है। ऐसे ही एक दिन मेरे घर के बारे में किसी ने मुझसे कहा, आपका घर बहुत पुराना है। जी हाँ, यह सच है, क्योंकि यह मेरे दादाजी के द्वारा बनाया हुआ घर है। मेरा घर 25 साल से भी अधिक पुराना है और मेरी समझ में तो वह अब भी नया है। मैं तो इससे भी पुराने वर्ष से पुराने घर में ही रह रहा हूँ। आज हम ऐसे युग में वास करते हैं जिसमें आमूल परिवर्तन तेजी से आ रहे हैं। हमारे दादा दादी के युग में जिस प्रकार लड़के लड़कियों को सामने विवाह का प्रस्ताव रखते थे, वह आज की युवा पीढ़ी के लिए बिल्कुल अलग है। विवाह संबंधी विचारों से सर्वथा भिन्न था। नैतिकता के मन भी बदल रहे हैं। मनुष्य नैतिकता के नए स्तरों की चर्चा करते हैं, परंतु वे तो नूह के युग के तुल्य पुराने हैं। नए की यह सतत खोज हमें निराशा की ओर ले जा रही है। यही वह बात है जो अनेकों को निरुद्देश्य जीवन के आधे या अंधे मार्ग पर ले आई है। यिर्मयाह कहता है कि हमें प्राचीन काल के अच्छे मार्ग को खोजना है, क्योंकि वही हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। मानसिक चिकित्सकों के पास जाना और नई नई चिकित्सा में समय और पैसा लगाने की अपेक्षा हमें जो वास्तव में करना है वह है कि उसके पास आ जाएं जो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 से 30 पद में हम इसे पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, हम मसीह में विश्राम पाते हैं। आज के मनुष्य को यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, स्पर्श प्राणी के इस युग से बढ़कर कुछ चाहिए। हमें प्राचीन काल के मार्ग की खोज करना है जिसमें शांति है। नहमिया की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 के पहले हिस्से में हम पढ़ते हैं, उनसे आगे हरयाह के पुत्र उज्जियेल ने और अन्य सुनारों ने मरम्मत की। इससे आगे हनन्याह ने, जो गंधियों के समाज का था, मरम्मत की। क्या आप पर इसकी विशिष्टता का प्रभाव पड़ता है? जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि यरूशलेम के शहरपनाह के पत्थर विशाल थे और उनका भार भी बहुत अधिक था। सुनारों को छोटे छोटे हथौड़े चलाने का अभ्यास था। वे विशाल पत्थरों पर काम करना नहीं जानते थे। शहरपनाह को साधना एक अत्यधिक कठिन कार्य था, परंतु उन्होंने उसे किया। परमेश्वर ने इस काम पर विशेष ध्यान दिया और सुनारों के काम को लिख लिया। आज भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के लिए सच्चा त्याग एवं बलिदान करते हैं, जो उनके लिए बहुत कठिन होता है। स्मरण रखें कि परमेश्वर सारी बातों पर ध्यान देता है। नहमिया 3 अध्याय उसके 8 के अगले भाग में हम देखते हैं, और उन्होंने चौड़ी शहरपनाह तक यरूशलेम को दृढ़ किया। जी हाँ, गंधी वे थे जो दवाई की गोलियां बनाते थे। उन्होंने भी उन विशाल पत्थरों का काम किया। परमेश्वर ने उन पर विशेष ध्यान दिया और उनके नाम अपने वचन में लिख लिए। मैं आज उन लोगों को देखना पसंद करता हूँ जो वास्तव में परमेश्वर के काम में हाथ बटाते हैं और दर्द से कराहते हैं। वे वास्तव में उसकी सेवा करते हैं। मैं कुछ परमेश्वर के भक्तों को जानता हूँ जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, सेवक हैं, और परमेश्वर की सेवा में अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी है। मेरा एक मित्र है जो दिल के दौरे से गुजर गया। वह परमेश्वर का भक्त था और उसने प्रभु की सेवा में अपने प्राण निछावर कर दिए। आज भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसी ही सेवा में हैं। मैंने एक प्रभु के दास से कहा, देख भाई, मैं तेरे कष्टों को जानता हूँ। तू हद से अधिक परिश्रम कर रहा है, यह अच्छी नहीं है, कुछ विश्राम भी कर ले। मेरे मित्रों, यदि आपके पास एक अच्छा मित्र है, सेवक है, और वह अथक परिश्रम कर रहा है, तो उसके गले में बाहें डालकर कहें कि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वह एक सुनार या गंधी हो सकता है, उससे कहें कि वह आवश्यकता से अधिक परिश्रम न करे। परमेश्वर के जनों की आज आवश्यकता है, उनके लोगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। नहमिया 3 उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोहेश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। ध्यान दीजिए, इस पर कृपया विशेष ध्यान दें। आज नारी मुक्ति अभियान चल रहा है, नहमिया के युग में भी चल रहा था। उन्होंने कहा, हम भी जाकर शहरपनाह बनाने में सहायता प्रदान करेंगे। हल्लोहेश के पुत्र शल्लूम के पुत्र नहीं थे, अतः उसकी पुत्रियों ने कार्यभार संभाला और शहरपनाह के निर्माण में श्रम दान किया। परमेश्वर ने ध्यान दिया और लिख लिया। मित्रों, अब हम देखेंगे तराई का फाटक। नहमिया 3 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, तराई के फाटक की मरम्मत हनून और जानोह के निवासियों ने की। उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए और 1,000 हाथ की शहरपनाह को भी, अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। तराई का फाटक वह द्वार था जो यरूशलेम से निकलकर तराई में जाने के लिए था। यह नगर के किसी भी ओर से हो सकता था, क्योंकि आपको यरूशलेम से निकलना हो तो तराई में जाना होगा। इसी द्वार से हम में से अनेकों को निकलने के लिए बुलाया गया है। मेरे मित्रों, मैं इस फाटक के बारे में सोचता हूं तो मुझे अंधकार से भरी हुई तराई का ध्यान आता है। हम सब उस तराई में से होकर चल रहे हैं। दाऊद ने भजन संहिता 23 में यही कहा है, यह तराई आगे चलकर अधिकाधिक सक्रिय होती जाती है। यदि प्रभु ना आए तो आप उस द्वार से बाहर निकल जाते हैं। इस द्वार में व्यवहारिकता की शिक्षा भी है। यह दीनता का द्वार है, नम्रता का द्वार है। परमेश्वर कभी हमें परीक्षाओं और कठिनाइयों से लेकर चलता है कि हम कुछ सीखें। लिखा है कि विश्वास हम में अनेक गुण उत्पन्न करता है और उनमें से एक है मन की दीनता। कुलिसियों के पत्रे में लिखा है 3 अध्याय के 12 पद में, दीनता और नम्रता धारण करो। यह स्वभाव हम अपनी मानवीय क्षमता में विकसित नहीं कर सकते हैं। मित्रों, दीनता मन में उत्पन्न होती है। यह पवित्र आत्मा का फल है। मुझे स्मरण आता है कि एक मनुष्य अपने मित्र से कह रहा था, मैंने दीन बनने का प्रयास किया और अंत में सफल हो गया। उसके मित्र ने कहा, मैं देख सकता हूं कि आपको इसका घमंड है। उसने कहा, निश्चय ही मैं हूं। दीनता मानवीय प्रयास से नहीं आती है और हमें पवित्र आत्मा ही दीन बनाता है। एक परमेश्वर के दास या सेवक के बारे में कहा जाता है कि जब वह परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा था, तब वह अपनी कक्षा में सबसे अधिक प्रतिभाशाली था। अतः अपने अध्ययन की ख्याति के कारण उसे एक दिन किसी कलीसिया में प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि वह सर्वोत्तम विद्यार्थी था, निपुण था। इसलिए वह बड़े घमंड से प्रचार मंच पर चढ़ा और प्रचार करना आरंभ किया। उसका प्रचार पूरी तरह अव्यवस्थित था। उसने यह अनुभव किया कि विचारों को कागज पर लिख लेना आसान है, परंतु प्रचार करना एक अलग बात है। वह डर गया और सब कुछ भूल गया। प्रचार के अंत में वह बहुत लज्जित और दीन था। एक महिला उसे ध्यान से देख रही थी। जब वह बाहर निकला, तब उसने कहा, हे युवक, यदि आप प्रचार मंच पर वैसे ही चढ़े होते जैसे उतरे हो, तो आप वैसे ही उतरते जैसे चढ़े थे। परमेश्वर ने हमें दीनता की पाठशाला में शिक्षा दी है। दीनता आत्मा का फल है। तराई का फाटक वह द्वार है जिससे हम में से अनेकों को निकलना है। आइए हम आगे देखेंगे कूड़ा फाटक। नहमिया 3 अध्याय के 14 पद में लिखा है, कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मलकियाह ने की, जो बेतकेरेम के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। नगर के स्वास्थ्य के विचार से यह एक महत्वपूर्ण द्वार था, परंतु इसके बारे में अधिक चर्चा नहीं की गई है। आज यह द्वार यरूशलेम की विलाप की दीवार को जाता है। नहमिया के युग में यह द्वार सियोन पर्वत के दक्षिण पश्चिम कोने पर था। इस द्वार से कूड़ा बाहर लाया जाता था। दूसरा क्रंथियों के पत्र 7 अध्याय के 1 पद में पौलुस कहता है, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पौलुस ने मसीही जीवन में इस विषय पर उतना ही बल दिया है जितना किसी अन्य विषय पर। आपको और मुझे यह बोध अवश्य होना है कि हमें परमेश्वर के समक्ष अपने पाप स्वीकार करने हैं। मित्रों, मन की सच्चाई से किया गया पाप स्वीकार हमारे जीवन से कूड़ा बाहर करता है। पहला योहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में स्पष्ट लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आगे हम देखते हैं सोता फाटक। नहमिया 3 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, सोता फाटक की मरम्मत कोलहेजे के पुत्र सल्लूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और पाटा, और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए, और उसी ने राजा की बारी के पास के शेलह नामक कुंड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर से उतरने वाले सीढ़ी तक बनाया। ध्यान दीजिए, मैं यह मानता हूं कि सोता फाटक उसी बात का संदर्भ है जो प्रभु यीशु ने कुएं पर सामरी स्त्री से कहा था। योहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 14 पद में हम देखते हैं, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मंडपों के पर्व पर प्रभु यीशु ने खड़े होकर पुकारा था। योहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 38 में हम पढ़ते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगे। अगले पद में योहन्ना इसका अर्थ समझाता है, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस कहता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अतः सोता फाटक की शिक्षा यह है कि प्रत्येक विश्वासी में परमेश्वर का आत्मा वास करता है और उसे आत्मा से भर जाने की आवश्यकता है। आत्मा से भर जाने के बाद विश्वासी कुआं नहीं रह जाता है, वह जीवन जल का सोता बन जाता है जो अन्यों के लिए आशीषों का प्रवाह करता है। आज के युग में हम सबको मनुष्यों के लिए आशीष का कारण या सोता बनना आवश्यक है। आइए आगे देखें जल फाटक, यह 7वां द्वार है। नहमिया 3 अध्याय उसके 26 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, नतीन तो अपोल में पूर्व की ओर जल फाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्मट तक रहते थे। इस द्वार से लोग नगर में पानी लेकर आते थे। एक नहर द्वारा नगर में पानी तो आता था परंतु वह पर्याप्त नहीं था। अधिक आवश्यकता पड़ने पर वे इस फाटक से पानी लेकर भीतर आते थे। अब यह फाटक हमसे क्या कहता है? मेरे विचार में यह परमेश्वर के वचन का द्योतक है। इसी पुस्तक में हम आगे चल करके देखेंगे कि एज्रा ने यहाँ एक मंच बनाया था और उस पर खड़े होकर परमेश्वर का वचन पढ़ा था। उसका यह चुनाव आकस्मिक नहीं था, यह एक प्रतीक था। नया नियम इसके स्पष्टीकरण में ही कहता है कि वचन द्वारा जल से शोधन आवश्यक है। प्रभु यीशु ने कहा योहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 3 पद में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने कहा है शुद्ध हो। यूहन्ना 17:17 में प्रभु यीशु ने कहा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अतः जल फाटक परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। हम वचन के जल के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। इसी द्वार के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को बाहर पहुंचाते हैं। हम जलवाहक हैं जो प्यासों को जल देते हैं। भजन संहिता 119 उसके 9 में भजनकार ने एक प्रश्न पूछा और स्वयं उत्तर भी दिया, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जी हाँ, इस द्वार के बारे में आश्चर्य की बात यह है कि वह सुधारा नहीं गया था। इसका अर्थ यह है कि जब शहर पनाह ध्वंस की गई थी तब यह फाटक अछूता रह गया था, जो एक अति असामान्य बात है। अतः उसे पुनः निर्माण की आवश्यकता नहीं थी। इसका अभिप्राय आप समझते हैं मेरे मित्रों? परमेश्वर के वचन में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, वह अछूता है। आज कुछ लोग सिद्ध करना चाहते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और कुछ लोग यह सिद्ध करना चाहते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है। मैं अपनी सेवा के आरंभ में सदा सिद्ध करने के प्रयास में रहता था कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, परंतु मैंने यह सीखा कि हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। यह काम पवित्र आत्मा संभाल लेता है। मेरा काम तो केवल उसका प्रचार करना है। मैं सैद्धांतिक एवं निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। मैं सोचता नहीं, निश्चित जानता हूं कि यह है, और मैं यह भी जानता हूं कि वह आपके लिए क्या कर सकती है। उसे मेरे दुर्बल सहयोग की आवश्यकता नहीं है। बाइबल अपना ध्यान स्वयं रख लेगी। मेरे मित्रों, जब मैं अपने सेवा में आगे बढ़ने लगा तो मुझसे किसी ने कहा, आपको परमेश्वर के वचन को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वह अपनी रक्षा स्वयं करता है। वह ऐसा है जैसे घर के पिछवाड़े में शेर बंद करके रखा हुआ है। आपको पड़ोस की बिल्लियों से शेर की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, या रक्षकों की आवश्यकता लाने की जरूरत नहीं है। आप बस द्वार खोल दें और शेर अपने रक्षा स्वयं कर लेगा। वह बिल्लियों को भी संभाल लेगा। जी हाँ, ऐसा ही परमेश्वर का वचन है। उसे केवल बाहर निकालने की आवश्यकता है, उसे पुनः निर्माण की आवश्यकता नहीं है, विशेष करके मेरे अंकिचन सुधारे कार्य की। प्रभु ने मुझसे जो कहा वह यह है कि उसको बाहर निकालो, उन लोगों तक पहुंचाओ, और वह अपना कार्य करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को आप जान ले। वह चाहता है कि हम इससे प्रत्येक इस वचन को लोगों तक पहुंचाएं। यदि आज हम नहीं कर रहे हैं तो हमें पहुंचाने के लिए निर्णय लेना है। आज हम अपने जीवन को प्रभु के निकटता में लाएं, उससे आशीष मांगे, उससे सहायता मांगे कि वह हमारी सहायता करे। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
सुख और दुख में रहता प्रभु, तू बेसहारों का तू ही है सहारा। सुख और दुख में रहता प्रभु, तू बेसहारों का तू ही है सहारा, तू ही है सहारा। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं। है सहारा।